गोवर्धन पूजा का उद्घाटन करने हेतु भगवान ने गोवर्धन लीला रचाई। भगवान के नजरों में पूजनीय कौन है? अवश्य ही भगवान ने गोवर्धन को इतना पूजनीय माना है कि नित्य काल तक ये गोवर्धन की पूजा होती रहेगी, विशेष रूप से इन दो कारणों के वजह से। तो हमने हमारे पूजनीय होने की श्रृंखला में रामायण से भरत चरितामृत इसे प्रारंभ किया। रामायण में जितने पूजनीय पात्र हैं उनमें से भरत का एक विशेष स्थान है। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उन्होंने भरत को उनकी दृष्टिकोण से पूजनीय माना और रामायण के कई टीकाकारों ने भरत के उदाहरण से जो शिक्षाएं प्राप्त हुई है भूरी भूरी प्रशंसा की है भरत की। तो हमने रामायण का ये प्रसंग प्रारंभ किया वन गमन लीला से। अब तक भरत वो अयोध्या पहुंचे नहीं हैं, परंतु अयोध्या पहुंचने से पहले क्या कुछ अयोध्या में नहीं हुआ, उस एक दिन जिस दिन प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होना था, उस दिन राज्याभिषेक तो दूर की बात है, प्रभु श्री राम को अयोध्या में रहने तक नहीं दिया। एक और शिक्षा यहां पर यह प्राप्त होती है कि भगवान यदि चाहें तो चाहे कैसा भी मुहूर्त हो, साक्षात वशिष्ठ मुनि इन्होंने मुहूर्त निकाला था भगवान के राज्याभिषेक का। और वशिष्ठ मुनि कौन थे इसकी चर्चा हमने कर ली है। तो उन्होंने महाराज दशरथ को बताया था, सूचित किया था कि आपके पुत्र श्री राम, इनका राज्याभिषेक तुरंत कल ही कर देना चाहिए। तो एक दृष्टिकोण से इतने बड़े विद्वान पंडित, उन्होंने मुहूर्त निकालकर जो तारीख तय की, प्रभु श्री राम ने सिद्ध कर दिया कि जब उनकी इच्छा जो होती है तो उसके सामने जितनी भी तारीखें हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। तो उनकी इच्छा थी कि वन गमन लीला हो, तो चाहे वशिष्ठ मुनि उनके स्वयं के गुरु उन्होंने तारीख निकाली थी, नहीं। तो यहां हम लोग जो शिक्षाएं प्रारंभ किए हैं, पिछले दफा हम छठी शिक्षा को विस्तार से लिए थे कि रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को, जो कि एक विलाप के विरह के सागर में डूबे हुए, यहां पर रामचंद्र जी वो सरयू नदी, तमसा नदी, गंगा नदी, इन नदियों को पार कर रहे हैं, परंतु सबसे कठिन प्रभु श्री राम को जो पार करना हुआ वो इन अश्रुओं का सागर, किनका? अयोध्या वासियों के अश्रुओं का सागर। और ये अश्रु विरह के, प्रेम विरह के अश्रु अयोध्यावासियों के। तो रामचंद्र जी अब उनका जो अंतिम पड़ाव जहां पर से वो अब निकल रहे हैं, उनके वन गमन लीला प्रारंभ हो रही है, तो उन्होंने अयोध्या वासियों को सांत्वना दी, सिचुएशनल लीडरशिप। भगवान श्री कृष्ण वो भी रथ पर आरूढ़ अर्जुन को सांत्वना दिए। तो भगवद गीता सिचुएशनल लीडरशिप की कैटेगरी में आती है। और यहां पर वही भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र जी के रूप में अयोध्या वासियों को सांत्वना दे रहे हैं, सिचुएशनल लीडरशिप। हमने पिछले दफा उदाहरण लिया था, अर्जुन को भगवान ने भगवद गीता सुनाने के पश्चात परखा, अश्वत्थामा ने जो वो घोर अपराध किया था, पाप किया था, निसहाय द्रौपदी के 5 पुत्रों को उनके सर को धड़ से अलग कर दिया, तो अश्वत्थामा के साथ क्या न्याय होना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के समक्ष, भीम के समक्ष, युधिष्ठिर महाराज के समक्ष, उनके स्वयं के सानिध्य में अर्जुन के ऊपर ये निर्णय छोड़ दिया कि अर्जुन अब भगवद गीता सुनने के पश्चात सिचुएशनल लीडरशिप को कैसे निभाते हैं। फिर हमने उदाहरण लिया था पृथु महाराज और देवराज इंद्र का, और कुछ पक्षियों के उदाहरण लिए थे, हम इन उदाहरणों में फिर से नहीं जाएंगे। तो रामचंद्र जी उन्होंने भरत का गुणगान प्रारंभ किया और अयोध्या वासियों को कहा कि यदि आप लोग मुझसे सही मायने में प्रेम करते हो, यदि आप लोगों के अंदर मुझ में सही प्रकार की श्रद्धा है, यदि मुझे आप अपना नेता मानते हो, तो मेरे नेतृत्व में ये मेरा आदेश है कि आप अयोध्या में 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मेरे ओर से संभालिए, दशरथ, कैकेयी और भरत। When you genuinely glorify a worthy person, it makes you more attractive. अयोध्या वासियों ने जब ऐसा निस्वार्थ भाव देखा प्रभु श्री राम का, तो अब तक यदि इस लेवल पर उनका विरह प्रेम था, तो रामचंद्र जी के निस्वार्थ भाव को देखकर इतना ऊंचा चला गया और ज्यादा वो आकर्षित होने लगे और ज्यादा अब उन्हें मन में ग्लानि होने लगी। और एक दूसरे से अयोध्यावासी पूछ रहे हैं कि अरे कैकेयी, मंथरा, दशरथ, इन्होंने जो कुछ किया, हमने इनका क्या बिगाड़ा था। अयोध्यावासी अब आपस में क्या चर्चा कर रहे थे, हमने कैकेयी, दशरथ, मंथरा का क्या बिगाड़ा, कौन से हमारे पूर्व पापों का ये फल हमें प्राप्त हो रहा है, हमें पता भी नहीं। कौन सा फल? कि हमारे आराध्य श्री रामचंद्र जी से विरह। और हमने पिछले दफा हमारे प्रवचन को विराम दिया था इस मुद्दे को लेकर। माता सीता, उनका चरित्र इस प्रकार का बताया गया है, उनकी मासूमियत, कि माता सीता बार बार अपने आराध्य प्रभु श्री राम से पूछती चली जा रही थी, जंगल शुरू हुआ कि नहीं, गंगा के तट पर जंगल शुरू हुआ कि नहीं, सरयू नदी के तट पर जंगल शुरू हुआ कि नहीं, तमसा नदी के तट पर जंगल शुरू हुआ कि नहीं। इतनी मासूम माता सीता कि आज दिन तक उन्होंने अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में जंगल नहीं देखा, ऐसे ऐशो आराम में पली बड़ी सीता, और अब 14 वर्ष किस प्रकार का जीवन उन्हें बिताना होगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं सीता मैया से। इनोसेंट सरेंडर इज बेटर देन कैलकुलेटेड सैक्रिफाइस। वो एक श्याम सुंदर हैं जो बेहिसाब अपनी कृपा हमें हर क्षण बरसाते रहते हैं, और एक मैं हूं माला भी करता हूं तो गिन गिन के करता हूं। उनकी कृपा बेहिसाब और हमारी मालाएं गिन गिन के गिन गिन के। एक दफा ऑल्टर पर खड़े भगवान ने एक व्यक्ति जो हर रोज उनके मंदिर आता तो उनको एक बहुत सटीक ताना मारा। किसने ताना मारा? ऑल्टर पर खड़े भगवान श्री मदन गोपाल जी ने ताना मारा, और ताना बहुत ही सटीक था। उन्होंने कहा, अरे रोज आते हो मांगने के लिए, कभी कभार मिलने भी आ जाया करो। रोज आ जाते हो मांगने के लिए, ये देही वो देही कुछ न कुछ देते रहो देते रहो, अरे कभी कभार मुझसे भी मिल लिया करो। यह है कलयुग का हाल कि कलयुग में बहुत से लक्षण कलयुग के बताए गए हैं, प्रायण अल्प आयुष सभ्य कलावस्मिन युगे जन, बहुत से ऐसे लक्षण बताए गए हैं। उन अनेकों लक्षणों में भविष्य पुराण में बताया गया है कि कलयुग में धर्म धर्म को धंधा बनाया जाएगा। अक्सर आइडियली क्या होना चाहिए कि हमारा जो धंधा है यदि वो धर्म में परिणित हो जाए, ये सत्युग का विचार है कि धंधे जो हैं वो धर्म में परिणित हो जाए। कलयुग का विचार क्या है? धर्म को धंधा बनाया जाएगा। कथावाचक होंगे उसको धंधा बनाएंगे, यहां तक कि सत्संग को धंधा बनाया जाएगा कि सत्संग में कलयुग के अंदर बहुत से धंधे चलेंगे। यह है कलयुग का एक विशेष लक्षण, कैलकुलेटेड। बहुत बार हम बहुत मासूम तरीके से कृष्ण भावनामृत में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे हमारी वो मासूमियत जाती रहती है। वो इनोसेंट सरेंडर के लिए हम आते हैं और इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि फिर भगवान को इस प्रकार का ताना मारना पड़ता है कि भाई मेरे लिए तुम आए थे, कम से कम मेरी ओर तो देखो, मेरे पास क्या है केवल उसको देख रहे हो तुम। देखिए ये जो इनोसेंस है भक्ति में, हम देखते हैं बच्चों को जब हम देखते हैं तो उनके अंदर ये मासूमियत देखी जाती है। एक घर में मैंने देखा कि उनके छोटे से लड्डू गोपाल जी, और उनका अक्सर बहुत विशेष श्रृंगार हुआ करता था, तो मैंने एक बहुत विचित्र चीज देखी कि एक छोटी सी लड़की पड़ोस में रहने वाली, उस घर के पड़ोस में रहने वाली, वो लड्डू गोपाल जी के लिए झंडू बाम लेकर आती थी और लड्डू गोपाल जी के बगल में झंडू बाम, कभी अमृतांजन, ऐसे सरदर्द का बाम। तो मैंने पूछा कि ये क्या, ये कौन सी ऑफरिंग है तुम्हारी, झंडू बाम, अमृतांजन बाम। तो बहुत मासूमियत से उस छोटी सी बालिका ने कहा कि मैं जब भी आती हूं देखती हूं ये लड्डू गोपाल जी को के सर को बांधा जाता है, जैसे हम फेटा बांधते हैं ना, टर्बन बांधते हैं, तो ये भगवान को मुझे हर समय लगता है कि इनके सर में हर रोज कोई ना कोई अलग प्रकार का दर्द होता है, इसलिए मैं अपनी तौर से उनका सर दर्द कम हो। तो इसके अंदर मासूमियत दिखी। हमारे रामाचार्य प्रभु हैं देवलाली में, उनके घर पर नरसिंह भगवान के बहुत सुंदर विग्रह हैं। तो एक बार मैं उनके घर पर था, तो मेरे ख्याल से उन्हीं का भतीजा, तो उसको मैंने पूछा कि ये कौन है, तो छोटा सा वो कहता है ये लुंगी वाले लायन है। फर्स्ट टाइम मैंने नरसिंह देव का इस प्रकार का इंट्रोडक्शन सुना कि ये लुंगी वाले लायन है। जैसे मैं बता रहा था, लंदन में एक परिवार, उनके घर पर मैंने देखा वो प्रसाद के लिए हम लोग सब बैठे हुए थे, और अब मैं महाप्रसादे प्रेयर्स बोलने जाने वाला था, तो दो छोटे बच्चे उनके परिवार के वो लोग मुझसे पहले शुरू कर दिए, और वो मुझसे पहले इसलिए शुरू करे कि मैं वो इतनी लंबी प्रेयर न बोलूं, क्योंकि उनका फेवरेट आइटम बना हुआ था और उनको इतना वेट नहीं करना था। तो मैं अब हाथ जोड़कर बोलने ही वाला था, तो उन्होंने शुरू किया, मां प्रसादे गोविंदे खाओ पियो आनंदे। तो मैंने कहा ये बहुत स्पेशल प्रेयर, मैंने कहा ये किसने सिखाया आपको, ये हालात ने सिखाया। मां प्रसादे गोविंदे खाओ पियो आनंदे। हो सकता है बहुत से लोग उनके फेवरेट प्रिपरेशन के समय अपने प्रेयर्स इस प्रकार से चेंज कर दें। इनोसेंस इन डिवोशनल सर्विस इज समथिंग विच इज बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन कलयुग। श्रील प्रभुपाद अलाहाबाद में थे, कुंभ मेला का समय, प्रयागराज, और हम लोग भी यहां पर अनुभव किए हैं कि कितने दर्शनार्थी आते हैं, कितने यात्री आते हैं इस्कॉन के टेंट में। अब सोचिए प्रयागराज, इतना बड़ा महाकुंभ चल रहा है, सबसे बड़ा कुंभ जहां पर होता है, संगम का स्नान जहां पर है। तो एक व्यक्ति वो प्रभुपाद से मिलना चाहते थे, तो बहुत समय से वो प्रतीक्षा कर रहे थे, उनको प्रभुपाद से मिलना था। बहुत से और टेंट्स थे, अखाड़े थे, बहुत जगहों पर भंडारे हो रहे थे, प्रसाद मिल रहा था, परंतु इनको प्रभुपाद से मिलना था। तो एक डेढ़ घंटे प्रतीक्षा करने के बाद फिर प्रभुपाद से इनकी भेंट हुई। तो प्रभुपाद ने इनको प्रश्न पूछा, आपने संगम में स्नान किया। अब ऑब्वियसली जब अलाहाबाद आए हैं वहां पर प्रयागराज, तो संगम में स्नान करने के लिए आए। तो प्रभुपाद ने पूछा, आपने संगम में स्नान किया, ये व्यक्ति, इनके पास एक कमंडलू सा था जिसमें इन्होंने पानी रख रखा था, आप विश्वास नहीं करेंगे इस व्यक्ति ने क्या किया। इस व्यक्ति ने वो कमंडलू उठाया, प्रभुपाद के चरणों में वो पानी डाला, और प्रभुपाद के चरणों से बहता हुआ वो पानी लिया और अपने माथे पर डालते हुए कहा, मेरे लिए ये संगम है। मेरे लिए ये संगम है। और उसके साथ उसका एक छोटा बेटा भी था, तो प्रभुपाद ने उसके बेटे की ओर देखा और प्रभुपाद ने कहा, ये आपका बेटा है? ने कहा, हाँ मेरा बेटा है। आप ऐसा कीजिए, इसे हमारे साथ छोड़ दीजिए, मैं इसे सन्यासी बनाऊंगा। बहुत अनकॉमन था, प्रभुपाद एक अनजान व्यक्ति के बेटे को डायरेक्टली कह रहे हैं कि इसे इधर ही छोड़ दीजिए, मैं इसे सन्यासी बनाऊंगा। तो ये व्यक्ति जिसने अभी अभी प्रभुपाद के चरणामृत के संगम में स्नान किया, ये भी सहम गया। तो इसने कहा कि स्वामी जी, कुछ वर्ष इसे मेरे साथ रहने दीजिए, थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा, इसमें समझ आएगी, तो मैं इसे आपके पास छोड़ दूंगा। मना नहीं किया इसने। प्रभुपाद मुस्कुराने लगे और प्रभुपाद की मुस्कान, इस प्रभुपाद ने उसके बाद कुछ कहा नहीं। दो दफा कहा प्रभुपाद ने, हमारे पास इसे छोड़ दीजिए, हम इसे सन्यासी बनाएंगे। उसके पश्चात प्रभुपाद ने और कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराए प्रभुपाद। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, बहुत साल बाद, प्रभुपाद के गुजरने के बाद पदयात्रा उसी के आसपास के गांव में पहुंची, जो लोकनाथ महाराज की पदयात्रा। तो एक गांव, वहां पर हमारे पदयात्रा डिवोटीज का सत्कार बहुत ही विशेष तरीके से एक सन्यासी ने किया, और ये डिवोटीज बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ये किसी दूसरे संप्रदाय के सन्यासी और इतना सत्कार हमें दे रहे हैं। तब वो सन्यासी ने कहा कि बहुत वर्ष पहले मेरे पिताजी आपके स्वामी प्रभुपाद के पास मुझे ले गए थे, और आपके स्वामी प्रभुपाद ने मेरे ओर देखते हुए कहा था कि इस आपके लड़के को हमारे पास छोड़ दीजिए, हम इसे सन्यासी बनाएंगे, मैं ही हूं वो सन्यासी। तो ये व्यक्ति ने कहा, ये सन्यासी ने कहा, उस समय मैंने प्रभुपाद की जो मुस्कान देखी, तो मैं समझ गया प्रभुपाद कोई अनुरोध नहीं कर रहे थे मेरे पिताजी से, प्रभुपाद मेरे विषय में भविष्यवाणी कर रहे थे। अनुरोध नहीं था, भविष्यवाणी कर रहे थे कि तुम्हारा ये बेटा सन्यासी तो होने ही वाला है। तो वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे हरे कृष्ण डिवोटीज के प्रति। तो जब हम इस प्रकार की मासूमियत देखते हैं, जिसके अंदर कोई कपट नहीं है, निष्कपट, तो ये जो निष्कपट भाव है, ये कलयुग में सबसे एक महत्वपूर्ण गुण है हमारे उद्धार के लिए। और कोई गुण यदि हमारे अंदर हो या न हो, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया है कि उनके जैसा महावदन्याय अवतार और कोई नहीं, सारे अनगिनत अवतारों में से सबसे जो कृपालु अवतार है वो है चैतन्य महाप्रभु। पतित पावन हेतु तव अवतार, उनके विषय में बताया गया है। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि मैं पतित से पतित कलयुग के जीवों का उद्धार करूंगा, परंतु जो कपट है उसके अंदर, जो कपटी है, उसका उद्धार मैं भी नहीं कर सकता। अर्थात वन हु इज अ हिपोक्रिट, चैतन्य महाप्रभु सेज, इवन आई डिसोन दैट पर्सन। इट्स अ वेरी strong statement, even I disown. हाल ही में मैं ब्रह्मचारी के साथ चर्चा कर रहा था, तो मैं बता रहा था कि हमारी साधना भक्ति में एक तरफ है परफेक्शन और दूसरी तरफ है सिंसियरिटी। हमारे हाथ में क्या है? परफेक्शन नहीं। परफेक्ट तो केवल एक ही व्यक्ति हैं और एक ही व्यक्ति रहेंगे जो अल्टर पर खड़े हैं। ओनली ही इज परफेक्ट एंड ओनली ही विल रिमेन परफेक्ट एट द मोस्ट। व्हाट वी कैन बिकम? वी कैन बिकम परफेक्टली सिंसियर। वी कैन नॉट बिकम परफेक्ट बट वी कैन बिकम परफेक्टली सिंसियर। ये टर्म है हम साधकों के लिए। नॉट जस्ट सिंसियर, नॉट परफेक्ट, परफेक्टली सिंसियर। हमारे राधा गोपीनाथ के एक सीनियर ब्रह्मचारी हिज ग्रेस श्यामानंद प्रभु, वहां के चार टेम्पल प्रेसिडेंट्स में से वो एक हैं, उनके जीवन की एक घटना, जब मैंने पहली दफा ये घटना सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। श्यामानंद प्रभु, पता नहीं आप लोग में से कितने उनको जानते हैं, हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के इंटेलिजेंट और बहुत ही काबिल ब्रह्मचारी प्रचारकों में से वो एक हैं। और कुछ 20-25 साल पहले उन्होंने MBA किया था। आजकल आप किसी से भी मिलिए, पूछिए, हाँ क्या किया है? MBA, सब लोग MBA, ऐसे घूमते फिरते हैं, MBA किए हुए सब लोग। हम ब्रह्मचारी से पूछिए आपने क्या किया है, हम भी कहते हैं हम भी MBA कर रहे हैं। कौन सा MBA कर रहे हैं? मन बुद्धि अहंकार के ऊपर विजय। साधकों का MBA क्या है? मन बुद्धि अहंकार पर विजय। तो श्यामानंद प्रभु वो बेलगाम जा रहे थे और उनके साथ उनके एक और असिस्टेंट ब्रह्मचारी थे, मेरे ख्याल से शायद प्रेम निधि प्रभु थे उनके साथ। तो श्यामानंद प्रभु और प्रेम निधि प्रभु ये दोनों बस से जा रहे थे बेलगाम बॉम्बे से, वॉल्वो बस, बहुत कुछ मेरे ख्याल से 12 घंटे लगते हैं पहुंचने के लिए। तो बसेस बीच बीच में रुकती हैं अलग अलग जगहों पर। तो रात का समय था और ये वॉल्वो बस ब्रेक के लिए रुकी, तो वो अनाउंस करता है कि हम 15 मिनट के लिए रुकेंगे, 15 मिनट में जो जो आप लोगों को करना है करके वापस बैठ जाइए। तो यहां श्यामानंद प्रभु ये तुरंत बस से नीचे उतरे। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो गया और इनके साथ जो ब्रह्मचारी वो देखे, अरे ये कहां गए, आए नहीं, 20 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया, ये चिल्ला रहा है, वो कंडक्टर चिल्ला रहा है, ड्राइवर चिल्ला रहा है, कहां गया आपका महाराज, किधर गया, 25 मिनट हो गया, बोला था 15 मिनट में सबको वापस आने का, हम जाएगा अभी। तो ये बोले नहीं नहीं मैं जाके देखता हूं कहां गए वो। तो प्रेम निधि प्रभु नीचे गए चेक करने के लिए, तो उन्होंने देखा कहीं दूर श्यामानंद प्रभु एक किसी सार्वजनिक नल में अपना सर धो रहे थे। तो ये बोले कि ये यहां पर इस समय रात के करीब 11:30 बजे ये क्या कर रहे हैं? तो उनको जाके पूछा उन्होंने कि क्या हुआ क्या। तो बोले नहीं नहीं हो गया, चलो सॉरी लेट हो गया, बैठ जाते हैं। तो बैठे, फिर इनको मन में ये क्वेश्चन था कि ये कर क्या रहे थे। तो पूछा हुआ क्या, क्या कर रहे थे आप? तो श्यामानंद प्रभु ने कहा कि एक घंटे पहले मेरे पीछे शायद कोई महिला बैठी है, उसका शायद कुछ जी मचला रहा होगा या तबीयत ठीक नहीं होगी, उसने मेरे सर पर उल्टी कर दी। एक घंटे पहले तो इन्होंने कहा तो फिर आपने कुछ बोला क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हो सकता है उसको कोई तकलीफ हो रही हो, मैं उसे और गिल्टी महसूस नहीं कराना चाहता था। तो किसी ऐसी साधारण सी वो बस में बैठी हुई कोई महिला की हुई उल्टी को अपने सर पर एक घंटे रखा इन्होंने, और जब वो ऑफिशियली बस के ब्रेक का टाइम आया उतरे और उसे धोने गए, और उस जो भी वो महिला थी उसको बिल्कुल भी जताया नहीं कि तूने क्या किया है। तो जब मैंने सुना, अभी भी जो मैं आपको सुना रहा हूं, मैं जब भी इस घटना के विषय में सोचता हूं या सुनाता हूं तो लगता है कि एक साधक के जीवन में बहुत सी उपलब्धियां उसे प्राप्त होंगी, भौतिक रूप से बहुत से पद उसे प्राप्त होंगे, बहुत सा मान सम्मान उसे प्राप्त होगा, परंतु भगवान किसको पूजनीय मानते हैं? भगवान ऐसे भक्तों को पूजनीय मानते हैं कि जहां पर वो अपने इस प्रकार की मासूमियत दिखाए सरेंडर में, नॉट जस्ट सरेंडर बट इनोसेंट सरेंडर, जस्ट लाइक सीता देवी, शी नेवर कंप्लेंट, नेवर आस्ट व्हाट जंगल वुड बी ऑल लाइक। मेरे आराध्य जा रहे हैं 14 वर्ष वनवास के लिए, और वो जिस दशा में जाएंगे मैं उसी दशा में उनके साथ हो लूंगी। यहां तक बताया गया है सीता मैया के विषय में कि सीता देवी वो प्रभु श्री राम के आगे कई बार चला करती थी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब उन्हें पता चला कि जंगल में बहुत से कांटे होंगे जो चुभेंगे, तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं मेरे आराध्य श्री राम के सामने आगे चलूंगी तो जितने कांटे यदि उनको चुभने होंगे सबसे पहले वो मेरे पैरों में चले जाएं, मेरे पैरों में चले जाएं ताकि उनको एक भी कांटा न चुभे। Innocent surrender is far more superior than sacrifice which is calculated. अगर हम मन में ये भाव रखकर साधना कर रहे हैं कि मैं इतना जप करूंगा, मैं इतनी एकादशियां करूंगा, मैं इतने निर्जल करूंगा, इतनी जन्माष्टमी, ये सब कुछ बनाऊंगा और भगवान इसके बदले में मेरी लिस्ट तैयार है, That is called calculated surrender. अब प्रभु श्री राम जब उनका वनवास अब प्रारंभ हो चुका है तो सबसे पहले रामचंद्र जी उन्होंने जहां कहीं पर भी वो जाते, जिस किसी भी वन से वो गुजरते, वो सबसे पहले उस वन के जो साधु महात्मा होते उनकी खोज करते और उनके सानिध्य में उनके समक्ष उनके चरणों पर बैठकर उनसे वो आशीर्वचन सुनते। तो माता सीता और लक्ष्मण वो देखते थे कि जिस किसी भी जंगल से रामचंद्र जी गुजर रहे हैं उनको किसी का भय नहीं, कोई जंगली पशु जानवर का कोई भय नहीं, तुरंत वो खोजते फिरते कोई साधु महात्मा कोई तपस्वी यहां पर जिसका संग मुझे प्राप्त हो जाए। और टीकाकार कहते हैं कि रामचंद्र जी, अब देखिए सत्संग का जो इंटरेस्ट और ईगरनेस उनके अंदर कितना था रामचंद्र जी के अंदर कि पूरा 14 वर्ष का वनवास पड़ा है, तो यदि हम होते, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमको वनवास भेज दिया गया है, तो वहां पर हम होते तो भाई सत्संग करने के लिए 14 साल पड़े हैं, कोई साधु मिल गए तो ठीक है, पूछ लेंगे कहां से भाई आप, हाँ थोड़ा बहुत उनसे सुन लेंगे। खोज खोज के सत्संग करना, हाँ क्या करना, खोज खोज के सत्संग करना। और इस प्रकार से सत्संग वो क्या करते थे कि मानो अगला क्षण उनके जीवन के लिए है कि नहीं पता नहीं, इसलिए ये क्षण सत्संग कर लो। तो अगला लेसन हम डायरेक्टली प्रभु श्री राम से सीखते हैं, विजडम इज नॉलेज विच इज डाइजेस्टेड बाय ह्यूमिलिटी एंड रियलाइज्ड बाय एप्लीकेशन। वंस अगेन, विजडम इज नॉलेज विच इज डाइजेस्टेड बाय ह्यूमिलिटी एंड रियलाइज्ड बाय एप्लीकेशन। एक है ज्ञान और एक है विज्ञान, और इन दोनों का समन्वय जब वो हमारे आचरणों में दिखता है, तब जाकर कहा जाएगा कि ये व्यक्ति सही मायने में कृष्ण भावना भावित हो रहा है। राधा गोविंद महाराज, उनका एक प्रवचन मैं सुन रहा था बहुत साल पहले, तो उन्होंने कहा कि वो राधा गोविंद महाराज भागवत सप्ताह के लिए जो प्रसिद्ध हैं, और वो अक्सर वो भागवत सप्ताह बड़े बड़े शहरों में भी करते हैं, परंतु बड़े बड़े शहरों से ज्यादा वो गांवों में अलग अलग देहातों में बहुत भागवत सप्ताह करते हैं। तो ऐसे ही बिहार के किसी गांव में वो भागवत सप्ताह कर रहे थे, और अपने प्रवचन में एक सत्र में वो बोल रहे थे कि इस कलयुग में अधिकांश जो जीव हैं वो देहात्म बुद्धि में हैं। तो बार बार वो ये शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि। तो पूरे प्रवचन के पश्चात वहां का एक गांव वाला वो आया राधा गोविंद महाराज के पास, और उसने पूछा, स्वामी जी आपने कहा कि हमारे अंदर बुद्धि है बहुत। तो राधा गोविंद महाराज को पहले तो समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, आप बार बार कह रहे थे ना, देहात में बुद्धि, देहात में बुद्धि, देहात में बुद्धि। तो हम लोग जो देहात में रहने वाले हैं, आप कह रहे हैं हमारे पास बुद्धि है। तो ये तो हाल है कलयुग के जीवों का कि सही मायने में देहात्म बुद्धि कहेंगे इसको। बट लाइक वी वर सेइंग, नॉलेज विजडम। वन टाइम देर वॉज अ प्रोफेसर, एंड दिस प्रोफेसर ही did one exercise with the students. He put a chair in front of the students and he asked all the students, you have to write an essay on this chair, and the title of the essay should be The Invisible Chair. Minimum you have to express in 300 words. Let me see who is the most eloquent. Title kya hai essay ka, nibandh ka? The Invisible Chair. To sab likhna shuru kiye. Samne kursi rakhi hui hai. Aur us kursi ko prove karna hai apne essay ke through ki ye adrishya hai, Invisible Chair. To sab likhna shuru kiye. एक स्टूडेंट ने एक मिनट में अपना पर्चा दे दिया टीचर को, तो टीचर एक मिनट में लाके दे दिया, भाई तुमने एक मिनट में ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे कैसे लिख दिया। तो उसने केवल एक लाइन लिखी थी, विथ चेयर ही गॉट द फर्स्ट प्राइज। केवल एक लाइन में उसने क्या लिखा, विथ चेयर। दिस इज कॉल्ड विजडम। ये पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, ये देहात्म बुद्धि के परे की बुद्धि है। तो आगे अब जब उस रात राम और सीता को सोया हुआ लक्ष्मण देख रहे हैं, तो अभी तक सुमंत्रा हैं, सुमंत्रा इनके साथ अभी तक हैं, क्योंकि वो अपने आप को सौभाग्यशाली भी मान रहे थे और दुर्भाग्यशाली भी मान रहे थे कि मैं अकेला रहूंगा जो इनको छोड़कर जाऊंगा। यदि मैं अयोध्या वासियों के साथ रहता तो कम से कम उनके विरह में मैं अपना विरह बांट लेता, परंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे ये विरह की अग्नि में अलग अकेला ही झुलसना होगा। और उसके साथ साथ वो अपने आप को सौभाग्यशाली भी मान रहे थे कि मैं पता नहीं मैंने कौन से पुण्य किए हैं कि मुझे ये 14 वर्ष की शुरुआत के अंतिम क्षणों तक संग मिलेगा इनका। तो अब रात्रि का समय, राम और सीता विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मण वो उनके संरक्षण में हैं और सुमंत्रा वहां पर सो नहीं पा रहे, क्योंकि वो माता सीता को ऐसे कठोर शैया पर सोया हुआ नहीं देख पाते। और उस समय लक्ष्मण सुमंत्रा के साथ वार्तालाप करते हैं, और लक्ष्मण जो हैं वो अब याद कर रहे हैं घटनाक्रम को। कौन से घटनाक्रम को याद कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया, ये अयोध्या में अचानक कुछ घंटों में सब कुछ बदल गया, जिसको कहते हैं एवरीथिंग टर्न्ड अपसाइड डाउन, टॉपसी टर्वी। तो अब ये रात्रि का समय लक्ष्मण याद कर रहे हैं कि क्या क्या नहीं हुआ वहां पर अयोध्या में। तो याद करते हुए सबसे पहले वो उस घटना को याद करते हैं कि जब उन्हें पता चला कि उनके बड़े भाई रामचंद्र जी को वनवास मिला है और उन्होंने निश्चित किया कि वो भी उनके साथ 14 वर्ष वनवास बिताएंगे, तो सबसे पहला डर उनको हुआ उनके माता का, माता सुमित्रा, क्योंकि रामचंद्र जी ने जो शर्त रख दी थी कि एक ही शर्त पर लक्ष्मण मैं तुम्हें अपने साथ लूंगा यदि माता सुमित्रा का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा, उनकी स्वीकृति, जब तक उनकी स्वीकृति नहीं मैं नहीं तुम्हें अपने साथ लूंगा। तो अभी लक्ष्मण यहां पर बाधित इस शर्त से, तो उनको डर यह था कि एक कैकेयी ने मेरे श्री राम का राज्य छीन लिया, वो एक मां, और एक मेरी मां सुमित्रा, कहीं ये मुझसे मेरे प्रभु श्री राम की सेवा न छीन ले। तो लक्ष्मण उस डर से सुमित्रा के कक्ष में प्रवेश करते हैं कि पता नहीं क्या हो, प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी मां मुझे स्वीकृति दे दे, आशीर्वाद दे दे 14 वर्ष प्रभु श्री राम के साथ जाने के लिए। तो सुमित्रा वो जब लक्ष्मण को आता देखती हैं, सुमित्रा के पास समाचार पहुंच चुका है कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो चुका है। तो जैसे ही लक्ष्मण को आता देख रही हैं, लक्ष्मण के चेहरे पर डर, परंतु किस प्रकार का डर लक्ष्मण के चेहरे पर, अभी हमने उसकी चर्चा करी। सुमित्रा ने लक्ष्मण के चेहरे पर वो जो डर देखा, तो सुमित्रा ने सोचा कि कहीं लक्ष्मण मुझसे तो नहीं डरा हुआ है कि मैं अभी इसको ये बोलने वाली हूं कि 14 वर्ष तुझे जाना है, तो कहीं मेरे जाने के या इसे भेजने के आदेश से तो इसके चेहरे पर यह भय नहीं दिख रहा। देखिए, एक तरफ बेटा, एक तरफ मां, कहते हैं ना, लाइक फादर लाइक सन, लाइक मदर लाइक सन। यहां पर तो सुमित्रा क्या सिखा रही हैं, इन द नेम ऑफ लव डोंट जस्टिफाई फॉरसेकिंग वंस ड्यूटीज। प्रेम के आड़ में, ममता के आड़ में अपनी जिम्मेदारियों से मत कतराइए, ये सुमित्रा सिखा रही हैं। और सबसे पहले वाक्य माता सुमित्रा के अपने पुत्र लक्ष्मण के लिए माता सुमित्रा पूछती हैं। लक्ष्मण ने पूरा प्रवेश भी नहीं किया है कक्ष के अंदर, माता सुमित्रा पूछती हैं, लक्ष्मण तुम जा रहे हो ना, तुम वनवास जा रहे हो ना। लक्ष्मण के हृदय में जो उल्लास, जो प्रसन्न चित्त अब वदन हो जाता है उनका, ये सुनते सुमित्रा के ऐसे वचन कि लक्ष्मण तुम जा रहे हो ना। रामायण ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें करुणा रस प्रधान है, और जब तक हमारे आंखों से आंसू नहीं टपकते तब तक रामायण ये ग्रंथ हमारे अंदर उतरा नहीं है। टीकाकार कहते हैं कि सुमित्रा, आपको क्या लगता है कि सुमित्रा एक मां है, क्या उनके अंदर लक्ष्मण के प्रति प्रेम नहीं था? क्या सुमित्रा के अंदर लक्ष्मण के प्रति मातृभाव नहीं था? क्या सुमित्रा इतनी कठोर हो चुकी थी कि वो कतई इस बात का विलाप नहीं कर रही थी कि 14 वर्ष मेरा खुद का पुत्र, उसका चेहरा देखने नहीं मिलेगा, उसे प्रेम करने नहीं मिलेगा, अभी अभी इसका विवाह हुआ है। आप जानते हैं माता सुमित्रा, उन्होंने अपने आंखों में पूरे आंसुओं का सैलाब रोक कर रखा, जैसे कि आंसुओं का समंदर एक बांध होता है, पानी को पकड़ कर रखता है, उस प्रकार से माता सुमित्रा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और अपने ममता के आंसुओं को उस बांध से बाहर नहीं निकलने दिया। और जैसे ही लक्ष्मण ने प्रस्थान किया प्रभु श्री राम और सीता के साथ वन की ओर, और लक्ष्मण के पीठ पीछे वो बांध फट गया, कौन सा, माता सुमित्रा के आंखों में आंसुओं का वो जो बांध था वो फट गया। और लक्ष्मण के प्रस्थान के पश्चात माता सुमित्रा रोने लगी, और क्यों माता सुमित्रा ने अपने आंसुओं को बांध कर रखा था, क्योंकि माता सुमित्रा जानती थी कि यदि मैं रोने लग जाऊं तो लक्ष्मण के प्रस्थान में कठिनाई आएगी और लक्ष्मण जा नहीं पाएगा। यह है पूजनीय व्यक्ति जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं कि पूजनीय कौन है। एक और घटना माता सुमित्रा के संदर्भ में है जो कि हमारा हृदय द्रवित कर देती है। ये घटना है जब लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर जाते हैं, इंद्रजीत के बाणों से लक्ष्मण मूर्छित गिरे पड़े हैं और हनुमान जी को संजीवनी लाने भेजा जाता है। तो हनुमान जी संजीवनी लाने के लिए उड़ रहे हैं, छलांग उन्होंने लगाई और नंदीग्राम के ऊपर से उड़ते हुए दिख रहे हैं। और नंदीग्राम में उस समय कौन थे? भरत। तो भरत ने देखा कि ये कौन ऐसा वानर है, क्योंकि भरत नहीं जानते थे कि ये कौन है और कहां जा रहे हैं। और ये वनवास के अंतिम समय की बात है। सोचिए कितना समय बीत चुका है, भरत नंदीग्राम में तपस्या कर रहे हैं, यहां पर लक्ष्मण वो मूर्छित वो बेहोश पड़े हुए, हनुमान जी ने छलांग लगाई, भरत ने हनुमान जी को एक तीर मारकर नीचे बुलाया पूछने के लिए कि तुम कौन से ऐसे विशेष विचित्र वानर हो, तुम्हें देखकर मुझे कुछ अलग एहसास हो रहा है। तो हनुमान जी जान गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं रामदूत हनुमान हूं और लक्ष्मण मूर्छित बेहोश गिरे पड़े हैं, उन्हें पुनः जीवित करने के लिए मैं संजीवनी ले जाने के लिए आया हूं। जब लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था के विषय में सुना तो भरत ने सबसे पहले माता सुमित्रा को बुलाया कि माता सुमित्रा को यह समाचार मिलना चाहिए कि उनके लक्ष्मण बेहोश मूर्छित हैं, रणभूमि पर गिरे पड़े हैं। एक साधारण मां होती यह समाचार सुनती अपने बेटे के विषय में कि उसका बेटा बेहोश गिरा पड़ा है, पता नहीं जीवित होगा कि नहीं, रणभूमि पर क्या बीतेगी उस मां के दिल पर। जब माता सुमित्रा ने यह सुना हनुमान जी के मुख से, भरत के मुख से, अपने स्वयं के लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था के विषय में, तो माता सुमित्रा हनुमान जी से कहती हैं कि यदि लक्ष्मण के प्राण छूट जाएं, मुझे रंज नहीं होगा, परंतु रंज मुझे इसी बात का होगा कि उसके पश्चात रामचंद्र जी की सेवा आगे करेगा कौन, मुझे रंज उसी बात का है। इसलिए हनुमान, यदि तुम्हें लगता है कि लक्ष्मण पुनः जीवित नहीं होंगे तो मेरा एक और पुत्र यहां पर है मेरे पास, उसे ले जाओ राम की सेवा में, शत्रुघ्न को ले जाओ, वो जीवित है, वो रामचंद्र जी की सेवा करेगा। मेरा पुत्र बचे या न बचे, रामचंद्र जी की सेवा, उसमें कोई परिस्थिति, विकट परिस्थिति नहीं आनी चाहिए, उनकी सेवा निरंतर चालू रहनी चाहिए। ये हैं पूजनीय उदाहरण रामायण के। इसलिए जब लक्ष्मण अपनी माता सुमित्रा के कक्ष में उनके समक्ष उनके चरण छूते हुए उनसे आशीर्वाद मांगते पहुंचते हैं, तब सुमित्रा लक्ष्मण से कहती हैं, बहुत सुंदर ये श्लोक है जिसके अंदर सुमित्रा लक्ष्मण को अपना फाइनल इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं जाने से पहले। सुमित्रा कहती हैं, रामम दशरथम विद्धिम मम विद्धिम जनकात्मजम अयोध्या अटवम विद्धिम गच्छतात यथा सुखम। रामम दशरथम विद्धिम, हे लक्ष्मण, आज से 14 वर्ष तक और उसके पश्चात भी तुम्हारे लिए दशरथ कौन है? प्रभु श्री राम। तुम्हारे पिता कौन होंगे? रामचंद्र जी तुम्हारे पिता होंगे। रामम दशरथम विद्धिम, तो मानो लक्षण पूछे तो फिर मेरी मां कौन होंगी आज से? मम विद्धिम जनकात्मजम, मैं तुम्हारी मां नहीं आज से, तुम्हारी मां सीता होंगी। तुम्हारे पिता रामचंद्र जी, तुम्हारी मां सीता होंगी। और अयोध्या तुम्हारे लिए ये 14 वर्ष का जो वनवास है, जहां कहीं पर भी तुम जाओगे वो तुम्हारे लिए अयोध्या होगा, अयोध्या अटवम विद्धिम। क्योंकि जहां पर सीताराम है वहां पर अयोध्या है, तो तुम हर समय सीताराम के साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए जहां कहीं पर भी उनका सानिध्य प्राप्त होगा वो तुम्हारे लिए अयोध्या है। गच्छतात यथा सुखम, और जहां पर सीताराम उनको सुख प्राप्त होता है उसी में तुम्हें सुख प्राप्त करना है उनकी सेवा में। तुम्हारा सुख कहां पर है? जहां पर उनका सुख है, जहां पर उनका आनंद है। इसे कहते हैं एक आदर्श मां, जो अपने बेटे को पूर्ण आशीर्वाद दे, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं, पूर्ण आशीर्वाद देती हैं प्रभु श्री राम की निस्वार्थ निरंतर सेवा करने के लिए। इसलिए यहां पर ये जो 10वीं शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ लव डोंट जस्टिफाई फॉरसेकिंग वंस ड्यूटी। भुरिजन प्रभु श्रील प्रभुपाद के एक बहुत ही सीनियर डिसाइपल हैं, बहुत एडवांस्ड रियलाइज्ड डिवोटी हैं, सरेंडर अन टू मी जिन्होंने लिखा। तो भुरिजन प्रभु का विवाह हुआ जगत तारिणी माता जी, और ये जगत तारिणी माता जी ये जब इस्कॉन के संपर्क में आई तो ये एक बहुत ही सेलिब्रेटेड एक्ट्रेस थी, और पेपर में आर्टिकल भी छपा था बिफोर एंड आफ्टर। तो पहले जो एक्ट्रेस का उनका अवतार था वो एक फोटो छपा था, और फिर डिवोटी बनने के पश्चात वो हरे कृष्णा मंदिर में बर्तन मांज रही हैं साड़ी पहनकर, वो एक फोटो था। और वो आर्टिकल श्रील प्रभुपाद के पास लेकर एक डिवोटी आए। अब इनको बहुत बुरा लगा कि प्रभुपाद जो मेरा पिछले इस्कॉन में आने से पहले का जो मेरा जो भी कार्य था वो सब प्रभुपाद को दिखा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने देखा, और फिर प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स को बुलाया, और फिर प्रभुपाद ने पूछा, सो विच फोटो शी लुक्स ब्यूटिफुल। अब ये लोग तो इतने रियलाइज नहीं थे, तो ये लोग सोच रहे थे ऑब्वियसली जो पहले इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, सब मेकअप वगैरह लगाया हुआ, ऐसे सोच रहे थे। प्रभुपाद ने वो बर्तन मांजती हुई जो फोटो है वो दिखाए, सी शी लुक्स सो ब्यूटिफुल इन दिस फोटो। Why? Because she is satisfied serving the Supreme Personality of Godhead. And in the other photo, she looks so morose. Why she looks so morose? Because she is doing everything for her own sake. When you do something for your own sake, you will always have a morose face. But when you do something selflessly for Krishna, you will always be jubilant. Because Lord Krishna is always smiling. तो ऐसे प्रभुपाद, ये जगत तारिणी माता जी। तो भुरिजन प्रभु, ये अमेरिकन और ये ऑस्ट्रेलियन, तो भुरिजन प्रभु को प्रभुपाद ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इससे विवाह करो। और इन्होंने देखा तक नहीं किससे विवाह करना है, कोई फोटो भी नहीं मांगी, नाम भी नहीं पूछा, प्रभुपाद ने कह दिया है कि इनसे विवाह करना है, बिना देखे बिना परखे ये स्वीकार स्वीकृति दे दिए। गुरु ने कहा, गुरु मुख पद्म वाक्य। और उन्हें इन दोनों, ये जो दंपति हैं, एक अमेरिकन एक ऑस्ट्रेलियन, ये दोनों अब मेरे ख्याल से 40 साल से भी ज्यादा हो गए हैं एक आदर्श दंपति का जीवन निभा रहे हैं। तो भूरिजन प्रभु और जगत तारिणी माता जी, इनको प्रभुपाद ने हांगकांग भेजा था प्रचार के लिए। अब हांगकांग को बहुत फेवरेबल कंट्री नहीं है प्रचार के लिए, वहां पर लोग केवल तफरी सैर सपाटे के लिए जाते हैं ऐसे जगहों पर, वहां पर प्रचार करने के लिए इनको भेजा। तो ये हांगकांग में इन्होंने प्रचार प्रारंभ किया और बहुत से वर्ष बीत गए और प्रभुपाद ने कभी पूछा भी नहीं इनको कि भाई मैंने तुमको हांगकांग भेजा था, कैसा चल रहा है तुम्हारा प्रचार, कैसे हो तुम, कोई रिपोर्ट कुछ नहीं। तो इनको लग रहा था क्या प्रभुपाद हमारे बारे में सोच रहे हैं। वो एक बार अपनी ऑफरिंग में बता रहे थे, और ये हाल ही की बात है, ये 2010 की बात है कि उन्होंने एक प्रभुपाद ऑफरिंग में ये बात कही। तो कह रहे थे कि 40 साल पहले प्रभुपाद ने उनको हांगकांग भेजा था और 2010, 40 साल तक भूरिजन प्रभु के मन में यह प्रश्न था, डिड प्रभुपाद केयर फॉर मी। और 2010 में उन्होंने एक टेप सुना जहां पर प्रभुपाद के एक दूसरे सन्यासी डिसाइपल वो प्रभुपाद के पास टाइम सुना रहे हैं। कब की बात है, 2010, 40 साल बाद रिसेंटली। तो ये सन्यासी डिसाइपल प्रभुपाद के पास टाइम सुनाते हुए कहे, सो प्रभुपाद, आई वॉज विथ हिम एंड प्रभुपाद वॉज स्पीकिंग इन अ टेम्पल एंड ही वॉज सेइंग जस्ट लाइक my Bhurijan, how surrendered he is, that I sent him to Hong Kong and selflessly for so many years he has been preaching in Hong Kong, so committed, so dedicated. I am so grateful to my Bhurijan. अब ये इन्होंने टेप में सुना, प्रभुपाद के एक सन्यासी डिसाइपल प्रभुपाद के पास टाइम सुना रहे हैं और इनको पता नहीं कि भूरिजन प्रभु के मन में क्या चल रहा है 40 साल से। और भूरिजन प्रभु की आंखों में आंसू आने लगे कि मैं सोच रहा था मेरे गुरु मेरे बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, और यहां पर उनके गुरु वो हर समय सोच रहे थे। एक और बहुत सुंदर भूरिजन प्रभु के कनेक्शन में पास टाइम है कि भूरिजन प्रभु ने श्रील प्रभुपाद को एक अंगूठी गिफ्ट करी थी और उस अंगूठी पर उन्होंने इंस्क्राइब करवाया था हरे कृष्णा। तो पहली दफा एक ऐसी अंगूठी जिसके ऊपर हरे कृष्णा इंस्क्राइब कराया हुआ है, तो प्रभुपाद को दी। प्रभुपाद ने वो अंगूठी पहनी हुई थी, फिर प्रभुपाद का तो ट्रैवल्स चलता रहता था, तो प्रभुपाद अपने ट्रैवल्स में अमेरिका के कोई एक रिमोट सेंटर में थे जहां पर प्रभुपाद के निजी सेवक प्रभुपाद को मसाज कर रहे थे। बहुत साल बीत गए थे, 5-6